हरे कृष्णा। आज 27 अप्रैल संध्या जागृति के कार्यक्रम में हम बैठे हैं, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। इनका प्रश्न है कि ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है। ज्ञान वो है वो जो हम शास्त्र से पढ़ते हैं या सुनते हैं, और विज्ञान जो है उस ज्ञान को जीवन में अपनाने के बाद में जो हमको अनुभव प्राप्त होता है उसको विज्ञान कहते हैं। सो अल्टीमेटली ज्ञान का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। जब तक ज्ञान का रूपांतर विज्ञान में नहीं होता है तब तक ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। खाली यहाँ पर ज्ञान जमा रहेगा और ना किसी को बताया जाएगा ना उस पर अमल किया जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हर ज्ञान उसको जीवन में उतारने के लिए होता है, और जब उस ज्ञान को हम जीवन में उतारते हैं तो जो अनुभव होता है उसको विज्ञान कहते हैं। और कोई प्रश्न मुझे? यस, आप लोग कुछ ना कुछ जो हम लोग ज्ञान सुनाते हैं उसका जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं ना कि नहीं करते हैं? जैसे हमने बताया आपको अधिक मास के बारे में लास्ट टाइम, कितने लोगों ने कुछ कुछ सोचा है होगा ना घर में क्या करना है अधिक मास में, उसके बारे में क्या अनुभव है आपके, क्या प्रश्न है पूछ सकते हैं आप? यस, नो क्वेश्चन। हिंसा, हरे कृष्णा, इतनी हिंसा चल रही है कलयुग के अंदर तो भगवान अपना चमत्कार क्यों नहीं दिखाते हैं? हाँ, क्योंकि भगवान जो है ना इस दुनिया के में किसी के नौकर नहीं है। भगवान जो है वो सबके स्वामी हैं। और आजकल जो चल रहा है, जो हिंसा अपराध पाप जो चल रहा है उसके बारे में भगवान ने बहुत ज्ञान देखे रखा है, हर जगह पर ज्ञान देते रहते हैं, और पाप करने वालों को पता रहता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, लेकिन वो जानबूझ के पाप करते हैं। इसलिए भगवान जो है सृष्टि के द्वारा उनको दंड देती है, देते हैं भगवान। सुबह जो कोई व्यभिचार करता है उनको एड्स हो जाता है, जो नशा करते हैं वो जेल में बंद हो जाते हैं, जो स्मगलिंग करते हैं और कुछ होते, कुछ दिन सफल रहते हैं उसको उनका विनाश हो जाता है, वो उनका दंड है। भगवान को ऐसा कहा गया है कि जब दुनिया में सब जगह सब प्रचार बंद हो जाएगा, मतलब बताने वाले सब खत्म हो जाएंगे, सब शास्त्र नष्ट हो जाएगा, और जब करने वाले भी नष्ट हो जाएंगे, स्वयं बताने वाले अलग होते ना, वो बताते भी हैं जब भी करते, लेकिन भजन करने वाले खत्म हो जाएंगे, तब भगवान अवतार लेंगे स्वयं, और उसको कहते हैं, उस अवतार का नाम है कल्कि अवतार। वो कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होता है, 4,32,000 साल के एंड में उसका होता है, और वो कल्कि अवतार कोई प्रचार नहीं करता है, वो केवल तलवार लेकर सफ़ेद घोड़े में बैठकर आकर सबको ख़त्म करने के लिए आता है। तो भगवान का अपना हर चीज़ का नियम होता है, क्या करने के लिए क्या फल देना है क्या दंड देना है सब कुछ निश्चित है, और उसके अनुसार सृष्टि चल रही है। पृथ्वी के लोगों ने अगर तय किया कि हमको ये करना है पाप का काम करना है तो उसका परिणाम मिलते जाएगा। अब आप भी आपका प्रश्न का और भी उत्तर दे सकते हैं कि ऐसे कहा गया कलयुग में राक्षसी प्रवृत्तियाँ बढ़ती जाएगी, हाँ, लेकिन राक्षसों का एक स्वभाव होता है, वो कुछ समय के बाद में अपने आप का ही नाश कर लेते हैं। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ उस बहाने, हाँ, जब ये देवताओं का और राक्षसों का एक बार तह हो गया, तह मतलब क्या हो गया, सुलह हो गई, हाँ, उन्होंने तय क्या किया कि हम समुद्र का मंथन करेंगे, और समुद्र का मंथन करके उसमें अमृत निकालेंगे, अमृत निकाल के सब बांट के लेंगे और आराम से रहेंगे, हाँ। अभी इस बात पर देवता और राक्षस सब एक हो गए, यहाँ तक कि देवता लोगों ने ये भी तय कर लिया कि हम लोग अमृत लेके देवता के भगवान के दया से कुछ करेंगे उसका। राक्षसों ने तय कर लिया कि जब अमृत हमको निकलेगा तो हम अपने बल से इन कमजोर देवताओं को परास्त करके उसको छीन लेंगे और अपने अंदर सबको बांट देंगे, ये भी तय हो गया। मतलब कुछ स्वार्थ के लिए एकता हो गई, दोनों पार्टी में भी हो गई और एक एक पार्टी के अंदर भी, अपने आप के अंदर भी एकता हो गई, क्या करने के लिए, कुछ लाभ लेने के लिए, कुछ हेतु के लिए। और जब समुद्र के, बहुत लंबी स्टोरी है वो, पहले विष निकला बाद में 14 रत्न निकले और एंड में जब अमृत निकला तो क्या हुआ, राक्षसों ने उसको छीन लिया, है ना। तो फिर राक्षसों ने जब छीन लिया तो हुआ ये, समझने की बात ये है कि हर राक्षस सोचा कि मुझे मिलना चाहिए और किसी को मिलना नहीं चाहिए, तो झगड़ा करने लगे वो, और देवता लोग देखते रहे, अरे हम तो अमृत को निकाल के खो बैठे, अभी उनके हाथ में गया और वो भी झगड़ा कर रहे हैं। तो फिर मोहिनी रूप धारण किया गया, वहां पर भी जब भी स्वार्थ सामने आया ना उनके, अमृत सामने आया, तो एकता उनकी बची नहीं। मतलब राक्षस लोगों की प्रवृत्ति होती है, वो कुछ लोग कुछ दिन हावी हो जाते हैं, लगता है कि अभी उनका ही राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, क्या भगवान है कि नहीं, ऐसा लगता है हमको। लेकिन कुछ देर बाद वही राक्षस एक दूसरे को खत्म करते हुए नजर आते हैं, ये पार्टी का आदमी ने इसका मर्डर किया, ये पार्टी के आदमी ने उसका मर्डर किया, तो यहाँ पर बॉम्ब डाला, यहाँ की उसकी पार्टी ने यहाँ पर बॉम्ब स्फोट किया, ऐसे करके जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपने आप अपने नाश करते रहते हैं। पृथ्वी का सिस्टम भगवान ने ऐसे बना दिया है। तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे, जैसे हमारे बचपन में हम देखते हैं कि हमारे बचपन में हमारे गली के अंदर हर रोज शाम को गैंग फाइट हुआ करती थी, अपने आंखों से मैंने बचपन में देखा हुआ है। ट्यूबलाइट फेंकना, तलवार फेंकना, लोगों को काटना, रास्ते पे फेंक देना मार के, ऐसा हुआ करता था। कुछ समय बाद में इस पार्टी के कुछ लोगों ने इनको मारा, उन्होंने फिर इनको मारा, ऐसा करके सब खत्म हो गए, बचे हुए जेल में गए, और हमारी बिल्डिंग, हमारे SSC के पहले एकदम हमारा जो इलाका था एकदम शांत हो गया, अभी गैंग फाइट नहीं कुछ नहीं। मतलब क्या हुआ, राक्षस लोग जो है ना इतने स्वार्थी होते हैं कि कुछ देर के लिए एकत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद में उनके अंदर मतभेद होता है, उनके अंदर भी डिवीजन होता है और एक दूसरे को ख़त्म कर देते हो। भगवान का जो है ना राज कायदा जो है बहुत परफेक्ट एकदम, वो सब लोगों को इलाज करते हैं। लेकिन अभी भी लोग प्रचार कर रहे हैं, नाम का जप कर रहे हैं, इसलिए वो अवतार नहीं ले रहे, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनका काम, उनका काम जो होना है उसका उपदेश सबको मिल रहा है। आप सुनने से अनसुनी कर सकते हैं, लेकिन आपको सुनाई पड़ रहा है, आपका मैसेज मिल रहा है, आपको पुकार आपको सुनाई पड़ रही है, आपको भगवान की आवाज़ आपके कान तक पहुंच रही है। इसलिए जो दुष्कृत करने वाले हैं उनका विनाश काल से, काल के प्रभाव से होता रहेगा, और जो भगवान का सहारा ले रहे हैं उनका उद्धार भी काल के प्रभाव से होता रहेगा। यस, और कोई प्रश्न है किसी? आप लोग पूछिए, आप लोग शांत क्यों बैठे? यस, क्या
जल्दी से पगला कोई मान लो?
देखो ऐसा है, हर एक वस्तु का एक समय होता है, हर एक वस्तु का एक समय होता है, हर वस्तु का, हर कार्य का एक समय होता है। हाँ, तो उसमें आज किसी ने मर्डर किया तो कल उसको हैंग नहीं करते कोई, उसका टाइम होता है, कभी वो भाग जाता है, फिर छूट जाता है, फिर उसको पकड़ते हैं, फिर 10 साल के बाद में उसको पकड़ा जाता है कि ये खूनी था, फिर उसका इलाज होता है। तो हर वस्तु हमारी इच्छा से नहीं होती है, जब उसका समय आता है तो उसका बराबर इलाज होता है। लेकिन भगवान की चक्की जो है ना देर से पिसती है, लेकिन जब पिसती है तो सही पिसती है। इसलिए बच के रहना चाहिए। जैसे वो होता ना, वो हमारे गांव में वो करते थे ऐसे हाथ से, उसका आटा निकालते थे ना गेहूं डाल के, तो जो जो पिस रहे हैं ना आटा, जो गेहूं पिस रहे हैं साइड में, बोल रहे हम लोग कितने दुर्भाग्य, हम तो पिसे जा रहे हैं, और बीच वाले जो है ना वो हंस रहे हैं, देखो आप कितने मूर्ख हो, आप पिसे जा रहे हो, हम बीच में सावधानी से खड़े हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। तो एंड में क्या होता है, सब आटा पिसने के बाद में ऊपर का ढक्कन निकालते हैं पत्थर का, बीच वाले को निकालते हैं, साइड में फैलाते हैं, फिर रखते हैं, फिर पिसते हैं अच्छी तरह से। हमको लगेगा कि अरे वो बच गए, वो देखो दाऊद इब्राहिम अभी भी जिंदा है, अरे वो देखो उसामा बिन लादेन अभी भी जिंदा है, अरे वो अभी भी है, ये भी अभी भी है, माओवादी आ रहे हैं, ये हो रहा है, नक्सलवादी आ रहे हैं, क्या हो रहा है, भगवान किधर है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन समय के साथ में सब नष्ट हो जाएंगे, आप देखते रहना, बस अपना काम करते रहना, बस भगवान के भजन का, सेवा का काम करते रहना, और इसमें फंसना नहीं किधर भी, और आपके जीवन में आपको दिखाई पड़ेगा, सब आते हैं सब चले जाते हैं, काल के प्रभाव में कोई बचता नहीं है। भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार क्या, आपने चमत्कार की बात कही थी ना, अरे चमत्कार तो भगवान का सब काल का चमत्कार है, उसके चमत्कार के सामने कोई ओसामा बिन लादेन कोई टिकता नहीं है, कोई हिटलर टिकता नहीं है, कोई नेपोलियन टिकता नहीं, कोई अलेक्जेंडर टिकता नहीं है, सब खत्म हो जाते। किधर है अभी नेपोलियन, किधर है अलेक्जेंडर, पूरे विश्व को उसने पदाक्रांत किया था, आज कहाँ है वो, इतिहास में गए वो, इतिहास के पर्दे के पीछे गए वो। हिटलर ने इतना लोगों का हत्या किया, इतना हाहाकार मचा दिया, मुसोलिनी ने किया, आयतुल्लाह खोमेनी ने कितना हत्याकांड किया, किधर है आज सब लोग, सब खत्म हो गए। ऐसा है, यही बड़ा चमत्कार है, कितना भी बड़ा आदमी छाती फुला के चलेगा, हाहाकार मचाएगा, एक दिन उसको भी खत्म होना पड़ेगा, यही चमत्कार भगवान का है। ये जो समझता है वो जानता है कि यस ही इज देयर, भगवान है, अपना काम ठीक से कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या करता है, थोड़ा चांस देते हैं, चलो सुधर जाओ, थोड़ा सा मौका देते हैं, बाद में अच्छे तरह से पटकते हैं, कभी कभी पटकाने के पहले थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर से पटकते हैं, तो क्या होता है, अच्छी तरह पटकता है आदमी उसमें से। अगर यहां से मैं गिलास फेंक दूंगा तो कुछ होगा, ऊपर लेके जाओगे फिर फेंकूंगा तो क्या होगा, अच्छी तरह टुकड़े हो जाएंगे उसके। इसलिए नष्ट होने के पहले, दीपक भी बहुत जोर से जलता है और नष्ट होने के पहले आदमी बहुत यश के कीर्ति पे जाता है, फिर वहां से उसको फेंका जाता है नीचे। जैसे भगवान ने तृणाव्रत को क्या किया था, तृणाव्रत को पहले बहुत आसमान में ले गए, वो उसको इतना लगा कि मैं यशस्वी हो गया, मैंने भगवान को ऊपर उठा के मैं कहीं लेके आया उसको, इतने ऊंचाई पे और ऊंचाई पे और ऊंचाई पे और ऊंचाई, इतना ऊंचाई पे लेके गया कि मतलब मैं यशस्वी हो गया, अभी अब भगवान को मार दूंगा मैं। उतना ऊंचाई पे लेने के बाद में भगवान भारी हो गए और उसको उतनी ऊंचाई से जमीन पटक दिया, पूरा खत्म कर दिया उसको। यस, इफ यू डोंट आस्क यू विल कीप आस्किंग, प्लीज आस्क। हाँ जुड़ो, यस। क्योंकि कुछ पाप ऐसे होते हैं उसके छोटे से जिंदगी में पूरे नहीं हो सकते। आदमी इतना भयंकर है एक्चुअली, कि जानवर लोग इतने भयंकर नहीं होते, सिंह और बाघ, लेकिन आदमी लोग अपने जीवन में इतना भयंकर पाप कर सकते हैं। अभी हिटलर था ना, अब हिटलर ने एक जन्म में कितने लाखों लोगों को मारा, गैस चैम्बर के अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर। हाँ, तो इतना पाप उसने किया है कि वो एक जन्म में उसके जितना जीवन भगवान ने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ये जन्म दिया था ना, उतने जीवन में उतना फलन देना उसको नामुमकिन है। कई जन्म लगेंगे उसको, कई जन्म लगेंगे, पापी ऐसा है ना वो। और हर पाप का कोई शॉर्ट में दंड नहीं मिलता है, पूरा दंड मिलता है हिसाब किताब से एकदम। इसकी छोटी सी कहानी बताता आपको मैं। वो था ना धृतराष्ट्र, उसको उसकी कहानी ऐसी है, सबको अच्छा लगेगा सुन के, कि वो पारदी था, पारदी मतलब पंछी को मारने वाला था, बहुत 50 जन्म पहले की बात है, वो धृतराष्ट्र के 50 जन्म के पहले की बात है ये, जब वो पंछियों को मारने वाला आदमी था। वो क्या करता है, एकदम बाण मार के एक बार एक पंछी के दोनों आंखें तोड़ देता है, मादी और नर जो थे पंछी दोनों के आंखें को फोड़ देता है अपने बाण से, और उनके 100 पिल्लों को मार डालता है पंछी को। अभी उस पाप के फल के लिए उसको 50 जन्म लौटना पड़ता है, ठीक है। अभी किसने क्या किया, नर मादी को मारा और 100 बच्चे को मार डाला, तो उसके फल में क्या होना चाहिए, उसको और उसकी पत्नी को अंधा होना चाहिए और उसके 100 पुत्रों का वध होना चाहिए। अभी 100 पुत्र होने के लिए बहुत पुण्य करना पड़ता है, तो उसके प्रेरणा से, अंदर की स्फूर्ति से, पाप के फल के मिलने की पूर्ति से वो बहुत पुण्य करता है और 100 पुत्र उसको होते हैं 50वें जन्म में गांधारी के गर्भ से, और जन्म से वो अंधा हो जाता है। उस जन्म में गांधारी भी अंधे नहीं होते, भी अपने आंखों को पट्टी मारते, वो भी अंधी हो गई, और उनके 100 पुत्र होते हैं और वो 100 पुत्र का युद्ध में वध होता है, तब जाकर 50 जन्म के पहले किए हुए पाप का पूरा फल पूरा हो जाता है उसका। आप समझ सकते हैं, अभी हमने मांसाहार के हम जो बताते हैं ना, यहाँ पर बहुत लंबा स्लाइड शो दिखाते हैं आप लोगों को, तो हम क्या बताते हैं उसके अंदर, कि एक आपने अगर प्राणी का मांस खाया, एक बकरे के अंदर का अगर 100 ग्राम मांस आपने खाया एक दिन, और समझो 20 लोगों ने खाया, तो 20 लोगों को उस बकरी का जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है, तब जाके उसका एक पाप नष्ट हो जाता है। अगर एक नॉनवेज आदमी 50 साल नॉनवेज खाता है, तो 50 साल में वो कितने प्राणियों के शरीर का कितना मांस उसने खाया होगा, तो आप नंबर खुद गिन लो। एक प्राणी का मारने का, मांस खाने का फल क्या है, कि आपको वो प्राणी बनना पड़ेगा और वो आपका वध होगा, तब जाके आपको उस दर्द का इक्वल हो जाएगा, आप फिटम फाट हो जाएगा। तो अगर आपने 5,155 प्राणियों का मांस खाया होगा, तो आपको 5,155 बार जन्म लेना पड़ेगा और कटना पड़ेगा, तब जाके आपको खाली खाने का करके पाप जो किया था ना वो खत्म हो जाएगा। बाकी पत्नी का दिल दुखाया था और नेबर को गाली दिया था, उसका पाप का क्या होगा। इतने पाप हम करते हैं तो वो एक जन्म में नहीं पूरे हो सकते, और आपको वास्तव में अगर एक जन्म में पूरे करने हैं तो आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में, अपने आप नहीं होगा। नहीं नहीं, हम पाप करते रहेंगे, आप ऐसा नुकसान निकालो कि एक जन्म में फिनिश कर डालो, ऐसा नहीं होता है वो। हाँ, चोर जब चोरी करता है ना, तो वो तय नहीं करता है कि मैं 10 चोरी करूंगा, आप मुझे 2 घंटे में ही दंड दे दो फिर मैं फ्री हो जाऊंगा 2 घंटे में। वो निर्णय जेल चोर नहीं करता है, वो निर्णय जज करता है, ये इस व्यक्ति ने 10 चोरियां की है उसके क्या क्या दंड है वो बराबर देख के पढ़ के बताता है कि तुम्हारा एक दंड चोरी के लिए जन्मठेप, एक चोरी के लिए 10 साल, एक चोरी के लिए 1 लाख रुपए, 2 चोरी के लिए पत्थर फोड़ी और 4 चोरी के लिए उधर येरोड़ा में, ऐसा तो हिसाब किताब पूरा होता है ना, पूरा पढ़ता है वो, तो 1 बाय 1 उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। कभी कभी एक आदमी 4 खून करता है तो 4 खून के लिए उसको 4 जन्मठेप हो जाती है जन्म एक ही उसका, लेकिन 4 जन्मठेप हो जाती है ना उसकी, इस तरह से कायदा होता है। इसलिए हमको ये सब समझ के हमको डर लगना चाहिए कि हमारे जीवन जाने अनजाने में कितने पाप हो रहे हैं, सोचो आप, हम सोचते नहीं हैं हम क्या कर रहे हैं। पदम पदम यत विपदम नते श्याम, हर कदम पे हमारे जीवन में पाप हम करते हैं। पाँव में चल रहे हैं तो पाँव के नीचे कितने कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, रास्ते पे चल रहे कितनी चींटियां आपके पाँव के नीचे मर रही है, ये मत समझना कि आप लोग फ्री हैं उस पाप से। तो बाबुलिंग करना क्या है, सांस ले रहे तो भी पाप कर रहे हैं, कितने कीटाणु मर रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं ना तो करोड़ों बैक्टीरिया मर जाते हैं उसके अंदर, उनका भी जीवन होता है और सबका फल हमको लगता है। आप जब पानी उबालते हैं, जब सब्जी बनाते हैं, जब दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो हर समय मृत्यु हो जाती है हर जीव की, तो क्या करना चाहिए फिर, आप खाना बंद कर दें, अरे करें क्या फिर, सांस लेना भी पाप है, पानी पीना भी पाप है, स्नान करना भी पाप है, वॉट टू डू देन। इसलिए भगवान का नाम लेना है, क्योंकि भगवान का नाम लेने से जितने पाप हम नहीं कर सकते उससे भी अधिक पाप नष्ट करने की शक्ति भगवान के नाम के अंदर है। इसलिए हम बार बार कहते हैं भगवान के नाम को पुकारो, क्योंकि सांस लेने के बाद जो आदमी जीवन में मरते हैं उसको हम जानबूझ के नहीं मारते हैं, क्योंकि हमारा जीवन चलाने के लिए हम सांस लेते हैं और हम नहीं चाहते भी हमारी सांस चलती रहेगी, दिल भी चलता रहेगा हमारा, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हाथ में है कम से कम उसको छोड़ो। मांस खाना आपके हाथ में है, छोड़ देना उसको तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने को कुछ रोग हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो आप एंटीबायोटिक खाना स्वरक्षा के लिए है, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए नहीं, मैं मर रहा हूँ इसलिए अपनी रक्षा के लिए खा रहा हूँ उसको, मेरी इच्छा नहीं कि उसको मारूँ मैं। लेकिन कुछ लाभ कुछ पाप जो है हम जानबूझ के करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, किसी को दुखाते हैं, किसी को अपमान करते हैं, किसी का अपराध करते हैं, जानबूझ के चींटियों को मार डालते हैं, बैठे बैठे मच्छरों को ख़त्म कर देते हैं, कुछ कुछ नहीं तकलीफ हो रहा है आपको, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है सबको ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ, अनजान जाने अनजाने बच्चे जाते जाते रहते, कुत्ते को डांडे से मारते रहते हैं, पत्थर मारते रहते हैं, देखा ना आपने वृंदावन में, देखते हैं ना बंदरों को पत्थर मारते रहते हैं, बैच के मारते रहते हैं, कुछ काम नहीं है ऐसा, कुछ तकलीफ नहीं हो रही आपको, मजे में कर रहे हैं मजे में। उन पापों का दंड जो है हम बचा सकते हैं, उन छोड़ को छोड़कर जो नहीं बचा सकते हैं कम से कम उनसे बचने के लिए हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, ये समझना हर आदमी को जरूरत है। ऐसा मत समझे हम तिलक लगा लिया, सोला माला कर लिया तो हम पाप मुक्त हो गए, नहीं, हमको जानबूझ के पाप मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। जीसस क्राइस्ट ने क्या किया, सब लोगों के पाप को मुक्ति दिलाने के लिए खुद क्रॉस पर चढ़े, वो इसका मतलब ये नहीं अच्छा हो गया अभी हम लोग पाप करते रहेंगे मजा करते रहेंगे, जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ते रहने दो, उनको क्या, वो तो भगवान के पुत्र है, उनको क्या तकलीफ है, वो सब कुछ सह सकते हैं, उनके अंदर शक्ति है, तो चढ़ने दो उनको पाप लेकर हमारे क्रॉस पर चढ़ने दो, ये हीन बुद्धि है हमारी। हम जगह पढ़ते ना, बांद्रा में लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है, यीशु ख्रिस्त हमारे पापों के लिए मर गए, बहुत सिग्निफिकेंट वाक्य है वो, हमको सोचना जरूरी है कि हमारे लिए कोई कष्ट भोग रहा है, तो कम से कम उसकी करुणा को देख के हमको पाप तो कम से कम करना बंद करना चाहिए। उन्होंने पाप लेकर क्यों क्रॉस पर चढ़ गए वो, कि कम से कम तुमको होश आ जाए, तुम्हारे आंखों में रोशनी आ जाए, कम से कम अभी पाप नहीं करें। उन्होंने कहा है कि तुम शराब पियोगे तो मेरा खून पीने जैसा है वो, ये सेड इफ यू ड्रिंक वाइन इट इज लाइक ड्रिंकिंग माई ब्लड, उसका मतलब क्या हुआ कि मेरे खून को मत पियो। वो क्या बता रहे हैं आपको, उसका संदेश क्या है कि नशा मत करो, कह रहे दाउ शल्ट नॉट किल, किसी की हत्या मत करो, बता रहे हैं वो सब कुछ, दाउ शल्ट ट्रीट योर नेबर लाइक योर सेल्फ, जो हमारे पड़ोसी है उसको अपने जैसा ही ट्रीटमेंट दे दो, अगर आपको वो अच्छा लगता नहीं किसी से कोई आपको करेगा तो आप उनको भी मत करो, है ना, अगर आपको गाली लेना अच्छा लगता नहीं है तो किसी को गाली मत दो, क्योंकि जैसे आपको अच्छा लगता नहीं उसको भी नहीं अच्छा लगे। दाउ शल्ट नॉट कम अडल्ट्री कमिट अडल्ट्री, व्यभिचार मत करो, परस्त्री के साथ व्यवहार मत करो, सब बताया हुआ है। और आखिर में बताया है कि आखिरी कमांडमेंट क्या है, आखिरी बताते हैं कि भगवान पर मन से तन से विचार से भावना से प्रेम करो, दाई शल्ट लव दाई लॉर्ड विथ ऑल दाई हार्ट ऑल दाई माइट ऑल दाई पावर, हर प्रकार से, हर शक्ति से, हर विचार से भगवान पर प्रेम करो, पता ही हुआ सब कुछ। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, फिर भी लोग सुधरते नहीं है, क्या करें क्या करें? यमराज दंड देते हैं, अगर हमको अकल आ जाए तो अच्छी बात, अच्छी बात है ना। अगर कोई बुद्धिमान आदमी होगा ना तो उसको एक बार दंड से समझ जाता है वो। चार प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग क्या होते हैं, गलतियां करते रहते हैं, लेकिन जब सुनते हैं ना अरे ये गलत है तो बंद कर देते हैं, मतलब केवल सुन के वो समझ जाते हैं, उनको फर्स्ट क्लास लोग कहा गया है। सेकेंड क्लास लोग कौन होते हैं, जो सुनते हैं फिर भी वो काम करते हैं, फिर दंड मिलता है तो बंद कर देते हैं, उनको सुन के समझ में आता है लेकिन ठीक है क्या माँ बोल रही है उधर, उसका बॉल चोरी मत करो, देखो मैं दंडे से मारूंगी आपको। बोले क्या माँ, माँ नहीं मारेगी, माँ बॉल चोरी करते हैं माँ दंडे से मारती है तो बोले हाँ यार सच में मार रही है तो बंद कर देगा, तो सेकेंड क्लास हो गया वो। थर्ड क्लास क्या है कि एक बार उसने सुना नहीं समझा, एक बार बॉल चोरी किया डंडा खाया नहीं समझा, सेकेंड टाइम चोरी किया सेकेंड टाइम दुगना मार पड़ा तो वो बोला अभी नहीं करूँगा इसके आगे, हो गया थर्ड क्लास। और एक होता है फोर्थ क्लास कि जो बार बार बॉल चोरी करता है, बार बार बहुत परेशान होकर मार खाता है, फिर भी इतना वो आदि हो गया है उस आदत के कि वो बॉल चुराने की आदत से मुक्त नहीं हो सकता है, वो बार बार गुनाह करता है दंड खाता है वो जाते रहता है। आपको तय करना है कि आपको फोर्थ क्लास बनना है कि थर्ड क्लास के सेकेंड क्लास की फर्स्ट क्लास, ये चॉइस आपको दिया गया है। जैसे हमने कई बार कहा यहाँ पर बैठ के खड़े होके स्लाइड दिखा के बिना स्लाइड दिखा के कई बार कहा है कि मांसाहार मत करो, बहुत भयंकर दंड है ये हमारे लिए, बहुत भयंकर पाप है, कितनी बार समझाया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग खाते हैं घर में जाके, तो क्या होगा, दंड तो उनको मिलेगा ही, फिर भी सुधरते नहीं तो फिर दंड और डबल मिलेगा। भगवान है ना, भगवान इतने दयालु हैं कि वो आप तक उनका संदेश पहुंचाते ही हैं। कभी भी ये मत समझना कि जब पाप करता है उसको पता रहता है कि मैं पाप कर रहा हूं, उसको मालूम रहता है, कहीं ना कहीं उसे बचपन में पड़ोसी से किसी महाराज से उठते बैठते के जाते आते बाय चांस उसने सुना रहता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन उसको नहीं सुनने गए उसको, तो फिर क्या करेंगे, दंड देते रहेंगे। यमराज का दंड जो है ना इतना भयंकर है, आप लोगों को पता होना चाहिए, पांचवें स्कंद में भागवतम के पूर्ण वर्णन दिया है डिटेल में कि यमराज के अलग अलग 27 लोक हैं, हाँ 6 स्वर्ग हैं, 7 स्वर्ग लोक हैं, 1 पृथ्वी लोक है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, और 6 पाताल लोक हैं, हाँ अतल वितल सुतल पाताल कुंभ रसातल से 6 हैं, उसके नीचे 27 लोक हैं वो केवल जेल है, जेल, और 27 प्रकार के वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोकों में बहुत भयंकर दंड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी करोड़ों मील लंबी एक कढ़ाई होती है, हमारी कढ़ाई कितनी होती है, 2 फुट की भी हो सकती है, मैक्सिमम 3 फुट की हो सकती है, 4 फुट की हो सकती है, करोड़ों मील लंबी एक कढ़ाई होती है, उसमें करोड़ों अरबों लीटर तेल खोलते रहता है 400 सेंटीग्रेड 500 सेंटीग्रेड तापमान का, उसके अंदर नरक वाले जीव जो होते हैं ना वो उसको कहते हैं यातना शरीर में वो जन्म लेते हैं केवल दुख भोगने के लिए, उनको यमदूत जो होते हैं उठाकर उस तेल में डालते हैं और पूरा फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई, फिर बाहर निकालते हैं, फिर वो तड़पते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर वापस डालते हैं उसके अंदर, जब तक उसका दंड पूरा नहीं होता तब तक। ऐसे आपको एक लोक का वर्णन कर रहा हूँ, ऐसे कई लोग हैं जिसके अंदर जो होता है ना गन्ना, होता है ना गन्ना जो उसका कैसा गोल घूमता है वो, और जब गन्ना जब डालने के पहले कितना चिकना होता है, कितना सुंदर होता है, जब वहाँ से निकलता है तो उसका क्या होता है पूरा रस निकाल के कैसा होता है वो, फिर उसको दो मोड़ देते हैं, फिर और बार मोड़ते हैं, फिर और दोबारा मोड़ते हैं, फिर डालते हैं यहाँ से, फिर वहाँ से, फिर यहाँ से, पूरा रस निकाल के फिर गन्ना को फेंक देते हैं। लेकिन ये गन्ना तो भी अच्छा है, कम से कम उसको फेंक देते हैं कुछ देर के बाद में, लेकिन वहाँ पर क्या होता है जैसे हम लोग को डालते हैं उसके अंदर से तो वो सारा रस निकलता है बाहर, तब इतना तकलीफ होती है, इतना कष्ट होता है, लेकिन बाहर निकलते फिर वैसे पहले जैसे हो जाते हैं, फिर डालते हैं यहाँ से, 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 फिर डालते हैं यहाँ से। ऐसे कहा गया कि पॉलिटिशियन लोगों को वो दंड मिलता है मशीन के अंदर डालने का, जो व्यभिचार करते हैं, हाँ जो व्यभिचार करते हैं गलत शरीर के साथ में, जो पत्नी नहीं है उसकी, जो पति नहीं है उसका संबंध करते हैं, उनको ऑपोजिट सेक्स मतलब स्त्री के लिए पुरुष का शरीर जो है लोहे का बना हुआ है, लाल रंग के तप्त लोह रस से बना हुआ है, उसको चूमना पड़ता है। जिस शरीर को आपने यहाँ पर संबंध किया है वहां पर जाकर वैसे लोहे के तप्त लोह रस के शरीर को चुभना पड़ता है और तप्त लोहे का रस जो है उसको पिलाते हैं वो लोग, मुंह खोल के डाल देते हैं उसके अंदर, बहुत भयंकर पीड़ा होती है उसके अंदर। अभी जब मैं बता रहा हूं तो कुछ लोग हंस रहे हैं, लेकिन वहां पर नहीं हंसेंगे, इतनी गारंटी है। वहां पर केवल यातना, आक्रोश, पीड़ा, वेदना, यही होता है। उससे बचना है, रौरव से बचना है, कुंभिपाक से बचना है, तो अभी भजन करना होगा। और लगता है कि अरे हम तो ऐसे बेफजूल की बातें करते रहे, आपको हम लोगों को सबको बताना है भगवान का नाम जप करो, इसलिए ऐसे वैसे सब सॉरी बता के सुना रहे हैं। आप श्रद्धा रखो या मत रखो, ये सब है, वैसे बना हुआ है। आप कहेंगे हम लोग ट्रैफिक का रूल को मानते नहीं है, कौन ट्रैफिक का रूल, हु केयर्स, हम लाल बत्ती में चले जाएंगे, किधर पुलिस है, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, कोई पकड़ता नहीं। आप क्रॉस करके तो देखो, जैसे क्रॉस करोगे लाल बत्ती में, तुरंत झाड़ के पीछे से मामा आएगा, पकड़ेगा आपको, लाइसेंस लेगा, आपको बोला कल आओ भी कोर्ट में आ जाओ। तो नियम आप नहीं मानोगे तो भी नियम है, सृष्टि का नियम है और आप पर लागू है, समय का प्रभाव भी आप पर लागू है। इसलिए अच्छा यही है कि उसको मानो और उसको पालन करो। अगर वो सच भी नहीं है, अगर पालन करोगे तो कम से कम इस जीवन में सुखी तो रहोगे कम से कम, और अगर वो सब नियम सच निकला तो नुकसान आपका ही है। यस, ऐसा है हम, क्योंकि शरीर, इनका प्रश्न ही है कि पीड़ा जो होती है वो शरीर को होती है, तो मृत्यु भी शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। और प्रश्न क्या है आपका? देखिए ऐसा है, आपका बेटे का नाम क्या है? पार्थ। हाँ, अभी मैं यहाँ बैठता हूँ और पार्थ को एक अच्छी गाली देता हूँ तो क्या होगा आपको? मैंने आपको तो कुछ बोला नहीं, मैंने पार्थ को गाली दी है, तो क्या होगा बताओ ना? अच्छा लगेगा, आप मुझे और एक हार डालोगे आप आके, प्रभु जी थैंक यू वेरी मच, एक और हार मेरे बच्चे गाली देने के लिए, ऐसा करोगे आप? क्योंकि आपका अटैचमेंट पार्थ के तरफ है, इसलिए पार्थ को दुख होगा तो आपको भी दुख होगा। हाँ, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है, मैं ऊपर बैठा हूँ, हाँ जाके एक पत्थर मार के कांच तोड़ के आ जाओ, मैं क्या करूँगा? ठीक है, और एक पत्थर लो और एक कांच तोड़ो, ऐसा बोलूँगा क्या मैं? ऐसा नहीं करूँगा, मुझे दुख होगा बहुत, मेरी नई गाड़ी को आपने तोड़ दिया। तो दुख किसको हुआ? गाड़ी के हुआ कि मुझे हुआ? क्योंकि मेरी अटैचमेंट कार की वजह से है, कार के लिए है, इसलिए मुझे दुख जरूर होगा, इसलिए शरीर का कष्ट होगा, लेकिन शरीर से मुझे अटैचमेंट है इसलिए आत्मा को जरूर कष्ट होगा उसका। अगर आप शरीर से फिर विरक्त हो गए तो दुख नहीं होगा आपको, लेकिन हम सब लोग शरीर से जुड़े हुए हैं, शरीर से हमारी बद्धता है। हाँ, अभी समझो आप, मैं भी आपको, आप में से कोई व्यक्ति है बड़ा जवान है सुंदर है, और आपके चेहरे पर कोई आके कुत्ता काटता है और आपका पूरा इतना भाग नष्ट हो जाता है, आप एकदम कुरूप बन जाते हो, तो आप क्या करोगे? ऐसा एक रुमाल मुंह पे रखे ऑफिस में आया करोगे रोज। आप देखा कैंसर के मरीज कैसे होते हैं? उनका जॉ निकाल लेते हैं पूरा, पूरा जो है ना ये नीचे का जबड़ा निकाल लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? पूरा रुमाल बांध के ऐसे घूमते हैं। क्यों घूमते हैं ऐसे? वो शरीर तो नहीं है ना, तो क्या तकलीफ है उनको? नहीं, उनको अपने शरीर के स्वरूप के प्रति आसक्ति है और कुरूप बन रहा है, इसलिए वो छुपाने का प्रयास करते हैं। दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। स्थूल शरीर मरता है और सूक्ष्म शरीर जो है वो नहीं मरता है, वो आपके साथ में चला जाता है आत्मा के साथ। जब तक हम प्योर डिवोटी नहीं बनते हैं, संत नहीं बनते हैं, तब तक वो मन बुद्धि अहंकार जो है आत्मा के साथ में जाता है। वही हमारे रोग का कारण है पूर्ण, मन का जो विचार है ना वही हमारे पाप का पुण्य का कारण है। तो ये शरीर जो आपको दिखाई पड़ रहा है मेरा हाथ पांव वाला, वो मर जाएगा, लेकिन मेरे मन बुद्धि अहंकार जो है वो आत्मा के साथ मुझे यमराज के पास लेकर जाएगी और दंड मिलेगा मुझे। फिर वो मन बुद्धि अहंकार जो है कुत्ते के शरीर में जाएगा, बिल्ली के शरीर में जाएगा, राक्षस के शरीर में जाएगा, नरक में जाएगा, लेकिन यातना शरीर के अंदर मन बुद्धि अहंकार वही रहेगा। जब वो शुद्ध हो जाएगा तो वो शुद्ध बनकर फिर भगवान के द्वारा दिया हुआ शरीर प्राप्त करेगा और भगवान के धाम में जाएगा। तो मन बुद्धि अहंकार जो है हमारे दुख और सुख का कारण है, इसलिए बोलते हैं ना जब विचार करते हो सोच के करो विचार, अच्छा विचार करो, क्योंकि वो विचार का बाद में कभी कभी हम बोलने लगेंगे उसके बारे में, और जब बोलोगे तो विचार करके बोलो, क्योंकि जो बोलोगे वो कल करने लगोगे, कृति में आएगा ना, वो कार्य में आएगा। जब कार्य करोगे सोच के करो, क्योंकि आज कार्य का सोच कर नहीं करोगे कल वो कार्य की आदत बन जाएगी आपको। और जो आदतें अपनी हैं उसको जरा गौर से देखो, अच्छी हैं कि बुरी हैं, क्योंकि आदतों को ध्यान नहीं देंगे तो वो चरित्र बन जाएगा, मतलब आप वही बन जाओगे जो आप आगे चलोगे। इसलिए मन जो है, मन का विचार जो है, ये सभी रोगों का और दुखों का कारण यही है। जब तक वो मुक्त नहीं होता है, जब तक वो शुद्ध नहीं होता है, तभी तक हम लोग यहाँ तड़पते रहेंगे, कभी कुत्ते के, कभी बिल्ली के, कभी पेड़ के, कभी पंछी के शरीर में। तो शरीर को कष्ट होता है तो शरीर के आसक्ति की वजह से मन को और आत्मा को क्षति पहुंचती है, उसका नुकसान होता है। तो कारण क्या है सबका दुख का? ये क्योंकि पहले आत्मा ने ये निर्णय लिया था कि मैं भगवान की सेवा नहीं करेंगे, वो मन बुद्धि अहंकार दूषित हो गया उसका, और वो लेकर उसको नीचे आया और शरीर को धारण कराया उसने। हाँ, मन को जब ही हमने नहीं समझाया, नहीं हमको भगवान की सेवा करनी है, हम जाएंगे नीचे, हमको भगवान कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, तुरंत आपको ये शरीर प्राप्त हुआ। ये शरीर के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक का, आदि दैव का, आदि आत्मिक का कष्ट चालू हो गया, आपके सब पाप पुण्य का हिसाब चालू हो गया, त्रिविध ताप चालू हो गया, हाँ प्रकृति को जरा कष्ट हो रहा है, वो सब सब आपको चालू हो गया। एक मिनट के अंदर अकाउंट चालू आपका सबका दुख भोगने का। इसलिए हमको भगवान का संदेश मानना चाहिए। यस जय कृष्ण बाबू, कोई प्रश्न है आपका? यस आप बोलो। मेरी आपको विनती है कि आप लोग भगवान का भजन करो। अगर भगवान का भजन करेंगे तो आपको मन में प्रश्न आएंगे कि उनको कैसे प्राप्त करना है। मन प्रश्नहीन होना, इसके दो कारण होते हैं। एक तो आपको सब ज्ञान हो गया है, सब कुछ आपको समझ आया है भगवान का क्या कहना है, और उसका आप जीवन में ऑलरेडी उतार रहे हो, कोई प्रश्न बचा नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया और आप कुछ भी नहीं करते हो, तो फिर कोई प्रश्न नहीं होता है। इसका मतलब दो लोगों को प्रश्न नहीं होते हैं, एक पूर्ण ज्ञानी को और एक पूर्ण मूर्ख को। आप कौन सी कैटेगरी में है? मैं सॉरी, आपको मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप पूर्ण मूर्ख हो, लेकिन प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछने के लिए मनुष्य जीवन दिया गया है। प्राणी ये प्रश्न नहीं पूछ सकता है, कुत्ता बिल्ली पंछी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, मनुष्य प्रश्न पूछ सकता है। ऐसा क्यों? आई वॉन्ट टू नो। लेकिन मनुष्य होकर अगर हम प्रश्न नहीं पूछते हैं तो हम जानवर की तरह हैं। जो व्यक्ति मनुष्य बनने के बाद में आत्मा के उन्नति के बारे में प्रश्न नहीं करता है, हिज लाइफ इज अ वेस्ट। यस प्रभु जी।
सर, ट्रेनिंग
कारण त्यांना अजून पूर्ण विश्वास नाही आहे। हाँ, इसका कारण यह है कि हम सुनते हैं तो अच्छा लगता है, तुरंत करेंगे ऐसा लगता है, लेकिन फिर उसी वातावरण में प्रवेश करते हैं जिस वातावरण में पाप होते रहते हैं। अगर उनको सच में अगर मन को लगा है कि सही है, ये हमको करना चाहिए, तो फिर वो आके प्रश्न पूछेंगे आपको, सर मुझे करना है लेकिन मेरे पति मेरे को छोड़ते नहीं है, बोलते मटन बनाओ, मेरे पति शराब पी के घर आते हैं, मेरे पड़ोसी लोग शराब पी के दंगा करते हैं, मैं ऐसे माहौल में रहती हूँ या रहता हूँ। अगर उनको विश्वास हो गया है तो आपको आगे प्रश्न पूछेंगे आके, हो सर मुझे बचाओ, मेरे को कैसे कैसे करना है, मैं भी ऐसे वातावरण भयंकर जीवन में जी रही हूँ या जी रहा हूँ। लेकिन अगर आपको सुनकर भी अगर विश्वास या श्रद्धा या निश्चय नहीं होता है तो उसको हम दुर्भाग्य कह सकते हैं, बैड लक क्या बोल सकते हैं। हम लोग भयंकर अवस्था में ऑलरेडी पाप के वजह से उसके फल के स्वरूप हम लोग जी रहे हैं भयंकर अवस्था में, और उससे निकलने का रास्ता बता रहा है, फिर भी हम लोग सुन के अनसुन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है उसका मतलब? उसको दुर्भाग्य कहते हैं। उस दुर्भाग्य को मिटाने के लिए भरे भगवान ने अपना नाम दिया है हमको, दुर्दैवम इद्रशमिहा जनी न अनुरागः। अगर वो जो दुर्भाग्य का उपाय है उसके प्रति भी आपको आकर्षण नहीं है तो और क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताओ? अगर हम आपको कहें कि आपका सब पाप नष्ट हो जाएंगे, आप भगवान का नाम लो, दोबारा पाप मत करो, फिर भी हम नहीं समझते, तो क्या और क्या कर सकते भगवान, बताओ ना। भगवान ने इतना करुणा इतना कृपा किया है। आप कहते हैं कि लोग यहां सुनते हैं और फिर वापस वही करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमको अभी तक हम लोग दुखी हैं ये भी समझ में नहीं आ रहे। कि एक्चुअली शराबियों के बीच में हम रहते हैं, मांसाहारियों के बीच में रहते हैं, पापियों के बीच में रहते हैं, वो हमारे पड़ोसी भी है, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे माता पिता भी हैं, सब लोग मालूम है हमको, और हमको समझता नहीं कि ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, जीवन के लिए अच्छा नहीं है। अगर हमको ये समझता ही नहीं है, बताने के बाद भी समझता नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। दुर्भाग्य ये नहीं कि हम गरीब हैं, दुर्भाग्य ये नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ये दुर्भाग्य नहीं है। भगवान का संग मिलने पर भी हम भगवान का संग नहीं लेते, नहीं, ये दुर्भाग्य है। सच्ची गरीबी तो वही है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे इतिहास में गरीब संत नहीं हुए हैं। सुदामा विप्र कौन थे? वो धनी व्यक्ति थे क्या? हमारे नामदेव थे वो क्या गरीब थे? अमीर थे बहुत, क्या बहुत महले वाले थे क्या वो? जनाबाई वो क्या मिलेंदर थी क्या? हाँ, फोर्ब्स इंडिया के नंबर उनका नंबर वन था क्या? कबीर क्या एकदम अमीर थे? ताज बीबी ये सब क्या अमीर लोग थे बहुत, और सब सुंदर थे दिखने में, पढ़े लिखे थे क्या? नो, हमारा भारत का तो इतिहास ही पूरा ऐसा है, तुकाराम महाराज से गरीब एकदम। लेकिन गरीब होने पर उनका भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गरीबी अमीरी, सुंदरता कुरूपता, विद्या और अनपढ़ होना, ये भक्ति में कोई संबंध नहीं इसका। आप गरीब से गरीब होकर भी अच्छी से अच्छी भक्ति कर सकते हो। भगवान ने ऐसा प्रोविजन बना के रखा है, अरेंजमेंट करके रखा है। हम लोग करते नहीं हैं, इसलिए हम उनको कोसते रहते हैं कि इधर भगवान है, आप तो क्या है सब, आप सब लोग पढ़े लिखे हो, अच्छे धनवान भी हो, और बुद्धि भी आपको अच्छी है, और जन्म भी आपका अच्छी जगह पे हुआ है। नो सर, सबके जीवन में दुख रहते हैं। हाँ, सबके जीवन में दुख रहते हैं, अच्छे से अच्छे लोगों के अंदर भी दुख रहते हैं। पैसे वाले लोगों के अंदर झगड़े रहते हैं, दो घंटे की नींद भी उनको मिल नहीं सकती, इतना टेंशन है उनके लाइफ में। ये मत समझना कि पैसा होने से और बाद में भक्ति होती है, ऐसा नहीं है। जिसको भक्ति करनी होती है उसकी भक्ति होती है, फिर धनवान होने पर भी होती है और गरीब होने पर भी होती है। आपको करना चाहिए बस। अरे आप करके तो देखो, भगवान आपको हर तरफ सहायता करेंगे भक्ति करने के लिए। भगवान ये वादा नहीं करेंगे कि मेरे भक्ति करोगे तो बहुत पैसा दूंगा आपको, ऐसा नहीं भगवान बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्ति करोगे मेरे पास लेके जाऊंगा आपको मैं। इस दुनिया में अमीर बनाने का वादा नहीं करते वो। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे कैसे भगवान है, कम से कम दिखा तो दो इस दुनिया में अमीर बना के, फिर आगे की विश्वास करेंगे। स्वार्थ सोचते हैं। पहला इस जन्म में क्या मिलेगा पहला बोलो, ऐसे लोग भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है। आप बोलेंगे हम आपका नाम लेंगे, आप हमारा मालामाल कर दो तो हम आपको मानेंगे, बोले कोई मानने की जरूरत नहीं, मानो भी मत और मालामाल भी नहीं करेंगे आपको। लेकिन जो विश्वास रखता है वो कहता है भगवान हम आपके गोद में हैं, आप जो करना है करो, लेकिन हमको अपने आप पास में रखो बस। वो व्यक्ति का भगवान योगक्षेमम वहाम्यम, सब कुछ देखते हैं उसका, जो जरूरत है, धन नहीं है, क्या है, सब कुछ देखभाल करते हैं उसकी। आपको जब बालक जन्म हुआ था तब बहुत अमीर थे क्या आप? हाँ, बहुत डिफिकल्टी में थे आप, अभी बहुत सारा डिफिकल्टी था घर में आपको, फिर बालक को आपने बड़ा किया ना प्रेम से। हाँ, जो भी आपके पास था, कम ज्यादा था, लेकिन आपने बड़े प्रेम से बालक को बड़ा किया। अगर दुनिया का आदमी इतना प्रेम से अपने बालक को संभाल सकता है, क्योंकि बालक तुम्हारे पर निर्भर है पूरा, तो आप पूरा दिलो जान से लगे उसकी सेवा करने में, और भगवान को बोलेंगे आप भगवान हम आप पर निर्भर है, अरे वो तो भगवान है उसके पास क्या कमी है, तो कैसे देखभाल करेगा आपको। लेकिन एक ही कंडीशन है उसकी, बोलते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम योजनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, केवल मेरे बारे में सोचता है, मुझी के लिए अपने आप को अर्पण करता है, उसका योग और क्षेम दोनों मैं संभालता हूँ। उसके पास जो भी कुछ है उसको मैं संभाल कर रखता हूँ, और जो नहीं है वो उसको देता हूँ। फिर हम क्या कहते हैं, हमको खाली उसका है ना मुर्गी का जो पीछे का हिस्सा है वो हमको चाहिए, जो अंडा देता है, सामने का हिस्सा आप ले लो, उसको खिलाना पड़ता है ना। जैसे गाय का जो पीछे का हिस्सा है वो मुझे चाहिए, आगे का हिस्सा आप ले लो। आगे का हिस्सा क्या है, अनन्यस चिंतयन्तो माम, आप पहले मेरे अनन्य भक्ति करो। बोले वो नहीं करेंगे, हमको खाली दूध दो बस, आप पीछे का हिस्सा हमको दो, ये हमारी प्रवृत्ति है, इसलिए हम लोग फंसे रहते हैं हमेशा। ठीक है प्रभु जी, और कोई प्रश्न है किसी का? यस, हाँ 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 उसका क्या होगा, है ना, ये प्रश्न है ना। हाँ, इनका प्रश्न ऐसा है कि आप समझो नॉन वेज खाने वाले के घर में जन्म लिया है, जैसे हमने लिया था। हाँ, हमारा घर जो है वो नाम के हम लोग बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, लॉर्ड सरस्वत ब्राह्मण, लेकिन हमारे जाति के सब लोग मछली खाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा मछली खाते हैं। तो बाद में भक्तों के संग में आए और भक्तों के संग में फिर छोड़ दिया और भजन करते हैं भगवान का, तो फिर वो जो पहले मास का था उसका क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ, मतलब भक्ति होने के बाद में उसका क्या होगा, उसका दंड मिलेगा कि कैसा होगा? ऐसा है उसका, आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन अगर आप जन्म से मांस खा रहे हो दुर्भाग्य से या जन्म लेने की वजह से, हमको हेल्पलेसली खा रहे हैं, माता पिता जन्म से चिकन सूप पिला रहे हैं हमको दवाई के रूप में, जब बड़े हो गए भक्तों के संग में आए और भगवान का नाम शुरू किया, अगर हमने एक बार हृदय से भगवान को पुकारा है उनका नाम लेकर, तो आपका सारा पाप नष्ट हो जाता है, सारा, खाली मांस खाने का नहीं और भी सब खत्म हो जाता है। लेकिन तब तक वो नष्ट रहेगा जब तक आप दोबारा नहीं करेंगे उसको। अब बोलेंगे अच्छा हो गया, अरे डॉक्टर सानबाग ने बोला मुझे अभी मैं एक बार नाम लेता हूँ पूरा साफ करता हूँ मेरा अकाउंट, कल से दोबारा खाना चालू करता हूँ, न्यू अकाउंट, फ्रेश अकाउंट। तो जो पहला सो खत्म हो गया था ना, वापस जूइंग करके वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में, ऐसे बबल की तरह वापस आ जाएगा। आपने सोच कर रखा था गया वो, लेकिन दोबारा आ जाएगा, आज का भी रहेगा पहला भी रहेगा। और जब जानकारी होने के बाद जब कोई गलती करता है ना, तो माँ क्या करती है, दुगना दंड देती है उसको, है ना। आपको पता नहीं था, आपने किसी का जेब में 10 रुपये निकाला और जलेबी खाया, ठीक है यार, मालूम नहीं था आपको ये गलत काम है, माँ ने बताया गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर भी जब वो करता है तो माँ उसको डबल तमाचा देती है उसमें। वैसे ही अगर आपको पता चला कि भगवान के नाम करने से सब नष्ट हो जाएगा, अच्छा हो गया, और फिर दोबारा आपने किया, तो आपका डबल दंड बढ़ेगा उसका। इसलिए अगर आपको श्रद्धा है इस बात पर, हाँ, अगर आपको श्रद्धा है तो आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान आपके सारे पापों को माफ कर देंगे, लेकिन एक कंडीशन के ऊपर, दोबारा नहीं करना है उसको। कितना भी टेम्पटेशन आ गया, कितना भी मोह में आ गया, कितना भी आपको लगे लुभावना लगेगा, अरे याद आ रहे मुझे उस पापलेट की जो मैंने छोड़ दिया 25 साल पहले, लेकिन आज मुझे रहा नहीं जा रहा है, मैं जाऊँगा अभी मेरे मामी के पास खा के आऊँगा उसको, तो फिर नहीं होगा। फिर नो मीन्स नो, कोई मरता नहीं फिश नहीं खाने से और मांस नहीं खाने से, लेकिन ज़रूर आत्मा का नुकसान होगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, बार बार बताते हैं कि मत खाओ उसको, इतना भयंकर पाप, थोड़े से आनंद के लिए मत करो, क्या लाभ है उसके अंदर। हमको भी अच्छा अच्छा नॉनवेज बनाने को आता भी था उस समय पे, और खाने को भी आता था अच्छी तरह से, ऐसा नहीं कि आज भी हमको वो याद करके अच्छा लगता नहीं, लेकिन हमको पता है हाँ जहर कितना भी मीठा लगेगा वो जहर होता है, वो आपका विनाश करेगा। हाँ, वेश्या कितनी भी सुंदर रहेगी, कितनी भी अच्छी रहेगी, लेकिन वेश्या के पास जाने के बाद रोग होगा आपको, हमको पता होना चाहिए। हाँ, रस्ते भर की जो मक्खी बैठने वाली जलेबी कितनी भी टेस्टी क्यों ना हो, वो खाएगा तो आपको टाइफाइड होगा ही होगा, ये जानकारी होते हुए उस समय का जो अट्रैक्शन है, जो टेम्पटेशन है, उसको हमको त्याग देना चाहिए, ना बोलना चाहिए उस समय पे। वही आदमी को आदमी कह सकते हैं, क्योंकि आदमी ही केवल ना बोल सकता है निश्चय से, जानवर ना नहीं बोल सकता है। हाँ, जानवर को दोबारा रखोगे दोबारा भाग के खाने को आएगा, एक बार अंडा मारोगे तो भाग जाएगा, फिर दोबारा आएगा खाने को, फिर डंडा मारोगे फिर भागेगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर जाते रहेगा, वो ऐसे भागते रहेगा, क्योंकि उसके पास में निश्चय की शक्ति नहीं है। केवल आप और हम इंसान है ना, मनुष्य, इनके पास ही निश्चय शक्ति भगवान ने दिया है, ना बोलने की, हाँ बोलने की, अच्छा है बुरा समझने की, और बुरे को ना बोलने की, अच्छे को हाँ बोलने की शक्ति जो है उसको सद असद विवेक बुद्धि कहते हैं। वो बुद्धि केवल हमको और आपको दी है, इसलिए जागो और समझो भगवान क्या बता रहे हैं, तब जाके हमारा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो आना ही है, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट, कर लो राम भजन अर्जेंट। यही है, जिसको नहीं समझता है, आते रहो आषाढ़ी कार्तिक की, हाँ जाते रहो आते रहो, हर जन्म में भोगते रहो दुख, दंडे खाते रहो माया के, और तड़पते रहो, छुटकारा करने का मार्ग बता रहे हैं, इसी जन्म में हो सकता है। ये न किन प्रकार भक्ति विधान में आए हो नौकरी करने के लिए, हाँ फ्री में नॉलेज मिल रहा है, कोई चार्ज नहीं ले रहे उसका, ऊपर से आमरस भी पिलाते पीछे फ्री में। आ जाओ सुनो और प्रसाद भी लो, लेकिन करो तब जाकर जीवन सुधरेगा। सोचेंगे नहीं 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 अरे हम तो उस जाति के हम तो खाएंगे, अरे हम तो उस फलाना धर्म के हम खाएंगे, करो तुम्हारी मर्जी है, हमारा काम आपको बताने का है, वो हम कर रहे हैं। आपका काम सुनना है और करना है, आप नहीं कर रहे तो भगवान का नियम आपके लागू है, सब काल का नियम, माया का नियम, प्रकृति का नियम सब लागू है आपको, कोई छुटकारा नहीं है इसके अंदर, करो, क्यों नहीं करते हैं? हम तो आज सुबह जब कर रहे थे हॉस्पिटल में घूम रहे थे, मेरे मन विचार आ रहा था कि कुछ लोग यहाँ पर 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक वो भक्त बन रहे हैं, क्या तकलीफ है उनको? और ऐसा कहीं हुआ है क्या भक्त बनने के बाद में बहुत कष्ट हुआ आपको, बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट, बहुत नुकसान हुआ आपका, बहुत भयंकर घाटा में गए आप, सब मर गए परिवार के आपके भक्ति करने के बाद, ऐसा कोई हुआ है क्या? ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं करना है, तो ऐसे को क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पर पहुँचना इस हॉस्पिटल में बड़े भाग्य की बात है, कहीं आपने पूर्व जन्म में पुण्य किया होगा इसलिए आपको यहाँ पर जॉब करने का मौका मिला है, चाहे वो वार्ड बॉय के रूप में हो, आई बॉय के हो, या नर्सेस मैट्रन के रूप में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपका आने का भाग्य मिला है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ पुण्यकर्म किया होगा, जहाँ पर आपको भगवान के नाम का परिचय हो रहा है, जो तपस्या करने के बाद, ज्ञान करने के बाद, शास्त्र पढ़ने के बाद में, कई जन्मांतर तक करने के पश्चात आपको वो भगवान का नाम फल के रूप में मिलता है, जो आपको यहाँ मिल रहा है, मतलब इसका मतलब आपने पहले ऑलरेडी पुण्य कर चुके हैं इसलिए आप यहाँ पर आए हो। लेकिन उसके बाद में आप सब अगर भूलने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं नहीं सब भूल जाता, मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं उसके अंदर, तो क्या फायदा है उसका बताओ? अगर आपको 1 करोड़ रुपए भी हाथ में दिया जाए, आपको समस्या नहीं है, छोड़ दो उसको, तो क्या कर सकते हो उसको? अरे भैया 1 करोड़ रुपया ये, इसका ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इसका इतना वैल्यू है, इतना पावर है इसके अंदर, नहीं चाहिए मुझे कागज, ऐसा आदमी कोई बोलेगा तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। घोड़े को आप नदी तक ले सकते हो, लेकिन पानी पीना तो घोड़े के हाथ में ना, थोड़ी उसके लिए पानी आप पी सकते हो। अगर प्यास उसको है, आपको नदी दिखा रहे हो उसको, तो पानी उसको खुद को पीना है, अगर वो भी नहीं घोड़ा कर सकता तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हम लोग घोड़े को जरूर 50 बार 1000 बार नदी के पास लेके जाएंगे, इतना तो जरूर करेंगे हम लोग, ये हमारा कर्तव्य है, वो हम करेंगे जरूर। आप नहीं भी करेंगे तो बार बार बताते रहेंगे, साल में एक बार फॉलो अप इंडक्शन और प्राइमरी इंडक्शन और ये इंडक्शन वो इंडक्शन और ये जागृति वो जागृति, 9 बजे की प्रार्थना, 10 बजे की प्रार्थना, 2 बजे की प्रार्थना, 1000 बहाने से आपको बताते रहेंगे करो, सबका महत्व समझाते रहेंगे, आखिरी दास तक करेंगे, मैं वादा करता हूं आपको, मरते दम तक आपको बताएंगे करो, क्योंकि तो हमको पता है, हमको विश्वास हो गया है कि इसी में हम सबका कल्याण है, और कीजिए आप जरूर कीजिए, ये करने से किसका नुकसान नहीं हुआ आज तक, ये एक ऐसा बिजनेस है जो फुल प्रूफ बिजनेस है, इसको करने में आज का किसी का नुकसान नहीं हुआ, क्यों नहीं करते हम लोग? क्यों इंटरेस्ट नहीं हमको? क्यों लगे रहे हम लोग उसी धक्का खा रहे हैं, उसी कष्ट को भोग रहे हैं, उसी को कर रहे हैं? इस दुर्भाग्य को एक बार मिटा दो परमानेंटली, बार बार इस दुर्भाग्य को ऊपर आने मत दो, उसको मिटा दो, फाइनली मिटा दो, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, वो किसी के लिए रुकने वाला नहीं है, आज हम लोग जवान होके बहुत ऐज से चल रहे हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, सुंदर के कुरूप बन जाएंगे, हाँ आरोग्य संपन्न दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ बीमारी नहीं है, कल बीमारी से भर जाएंगे हम लोग, सबको होने वाला ही है, कोई छूटने वाला नहीं है, ना हम ना आप, जागो, अभी जागने का समय है, समय भी बहुत कम है, और इस कम समय में आपको अपना कार्य पूरा सिद्ध करना है। एक प्रश्न लेंगे आखिरी, और किसी का प्रश्न है? और यस यस प्रभु जी पूछिए। ऐसा है कि जब हम वनस्पति खाते हैं ना, कोई सब्जी वगैरह खाते हैं, तो उस वनस्पति को मारते नहीं है। आम खा रहे हैं अभी आप, मई महीने में आम खा रहे हैं ना, थोड़े आम का पेड़ मरता है, सालों साल हजारों आम देते रहता है वो पेड़ अपने को, जब उसका टाइम आता तभी वो पेड़ मर जाता है, लेकिन हमारे आम खाने से वो पेड़ मरता नहीं है, हमारे मौसम भी खाने से, हमारा कलेगन खाने से झाड़ नहीं मरता है वो, नंबर 1। और नंबर टू उसकी बात ये भी सही है कि जब आप जब पेड़ पौधे खाते हो तो भी उनको जीव को नष्ट कर रहे हो। हाँ, इसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं हम बार बार कि हम शाकाहारी नहीं है, ना शाकाहारी बनने का हमारा उद्देश्य है, हम प्रसाद खाने वाले हैं। भगवान ने जो बताया है कि जो तुम्हारे लिए तुम्हारे शरीर के अनुसार जो खाना बनाए वो आप खाओ, लेकिन केवल वो मत खाओ, उसको मुझे अर्पण करके खाओ, प्रसाद करके खाओ उसको। तो आप बोलेंगे अच्छा है ना, फिर आप मुर्गी अर्पण करो भगवान को और चिकन और मटन अर्पण करो प्रेम से और उसको प्रसाद बन के खाओ, तो भगवान खाते नहीं उसको क्योंकि वो उनको पसंद नहीं है। जो उनको पसंद है वही खाते हो, जो उनको उन्होंने बताया है कि ये मैं खाऊंगा वही मुझे प्रेम से अर्पण करो, वही स्वीकार करेंगे उसको। जो हमको अच्छा लगता है वो प्रेम से अर्पण करने के बाद भी आप स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि आप मुझे मेरे घर पर खाना खाने को बुलाएंगे तो आप मुझे जो अच्छा लगेगा वो बनाओगे, जो आपको अच्छा लगता है वो जरूरी नहीं कि मुझे अच्छा लगता हो। आपको करेला फ्राई अच्छा लगता होगा लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता होगा। अरे सर मैंने इतना बेस्ट डिश बनाया, एकदम फर्स्ट क्लास डिश बनाया मैंने आज आपके लिए, लेकिन मैं करेला नहीं खाता हूँ तो मैं नहीं खाऊंगा उसको, बाकी सब खाऊंगा करेला नहीं खाऊंगा, आपके लिए कितना भी बेस्ट होगा तो भी। तो उसी तरह से जब भगवान को हमको खिलाना है कुछ और प्रसाद के रूप में खाना है उसका, तो वो जो उनको पसंद है जो उन्होंने कहा है खिलाओ वही खिलाना पड़ेगा उसको, और वो खिला के हम प्रसाद खाते हैं इसलिए हम पाप से मुक्त रहते हैं। और बाकी रही बात इस्लाम धर्म की, उसमें क्या लिखा है, सी सूरा में क्या लिखा है, ज़कात में क्या लिखा है, वो मुझे मैंने पूरा नहीं पढ़ा है उसके अंदर। मुझे इतना समझता है जैसे आप उसको बता सकते हो कि क्या आपको इसमें दर्द दिखाई पड़ता है जब मांस खाता है आदमी, तो आपको ये मानते हो क्या कि इसको मृत्यु की पीड़ा देने के बाद ही ये मांस बनता है? तो वहाँ बोलेगा यस, क्योंकि मृत्यु के बिना मांस बनता ही नहीं है। मांस ये वस्तु मृत्यु के बाद ही बनती है, खत्म होने के बाद ही बन जाता है मांस। तो क्या मृत्यु दर्दनाक है? तो उसका उत्तर भी यस है। किसी को भयंकर दर्द होने के बाद ही मृत्यु, मृत्यु का दर्द तो भयंकर होता है, किसी को पसंद नहीं है वो। तो क्या ये सही है कि मेरे दो मिनट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए मैं एक व्यक्ति को मृत्यु की सजा दंड दे दूं, दर्द दे दूं, क्या ये इंसान के लिए सही है? इज इट पॉसिबल और इज गुड? तो अगर वो बुद्धिमान रहेगा, सही आदमी रहेगा, प्रामाणिक रहेगा तो वो ना बोलेगा। तो हमारा कहना है कि धर्म को छोड़ दो, आप पुराण को, बाइबल को, गीता को बाजू में रखो, खाली इतना ही रखो सामने अपने कि क्या हमारे इस थोड़े सुख के लिए किसी को मृत्यु का दंड देना सही है क्या? तो नहीं है उसका उत्तर, तो मत करो उसको, सिंपल। मुझे कल दिन लगेगा अरे ये आदमी बहुत सुंदर है, इसका मांस भी बहुत नरम नरम है, चलो खा लो उसको मैं, तो अच्छा है क्या ये? नहीं अच्छा है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा नहीं। कल कोई उड़े बोलेगा अरे तुम्हारा भी बहुत नरम नरम शरीर है, अच्छा है तुम्हारे लिए खा सकता हूँ मैं, लेकिन दर्द होगा उसके अंदर, कष्ट होगा, पीड़ा होगी। और इस दुनिया में सबको पता है दर्द देंगे तो दर्द मिलेगा, प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। अगर आप दर्द दे रहे हैं किसी को अपने आनंद के लिए तो हमको भी दर्द होगा। इसको नीति कहते हैं, इसको धर्म नहीं कहते। नीति मतलब क्या? लॉजिक, एथिक्स बोलते हैं उसको, नीतिमत्ता कहते हैं उसको। तो मुझे पता नहीं कुरान में क्या लिखा है डिटेल में, मालूम नहीं मुझे। इतना बड़ा जरूर समझता है कि अगर मेरे को सुख प्राप्त करना है तो हो सके उतना दूसरे को सुख देके सुख प्राप्त करो, हो सके तो खुद कष्ट लेके दूसरे को सुख दे दो, लेकिन जरूर किसी को कष्ट देके सुख लाने का प्रयास मत करो। वो तो इंसान है ना, इट्स ह्यूमैनिटी, वो तो धर्म बाजू में रखो उसको। धर्म को छोड़ के भी हम समझ सकते हैं कि इंसानियत मतलब पर दुख दुखी, दूसरों के दुख देखे जिसको दुख होता है उसको फर्स्ट क्लास आदमी कहते हैं, और मांस खाने वाले आदमी कैसे होते हैं? पर दुख सुखी, आप मरो हम आपको खाएंगे, ये प्रवृत्ति इंसान की प्रवृत्ति नहीं है। एनीवेज ये तो बहस जो है वो चलती रहेगी, जब तक जिसको खाना है तब तक ये बहस चलती रहेगी। हमको वो करना है जो हमको विश्वास हो गया उसको हमको जरूर करना है। हाँ बोलेगा दुनिया खाती है तो हम क्यों नहीं खाएं? अरे दुनिया नरक में जा रही, तो आप नरक में जाने को तैयार हो क्या? आप मत जाओ, आप अपना रुस्सा पहले करो, फिर दुनिया के बारे में सोचो, दुनिया क्या कर रही है। खुद पहले सुधरो फिर दुनिया के सुधरने का प्रयास करो, फर्स्ट चेंज योर सेल्फ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और हम 5 मिनट के लिए अभी कीर्तन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमको सद्बुद्धि दे और हमको आपका भक्त बनाने के लिए सहायता करें। हाँ सब लोग खड़े हो जाओ, कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा।